تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 156 سے. غزوہ احد ہی کا تناظر ہے جو پچھلی کئی آیات سے ہم دیکھ رہے آ رہے ہیں. اسی کے اندر سے اب کچھ مزید باتیں ہیں جو ہمیں اپنے لیے عمل کی بہت ساری باتیں سکھاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, سب کو خطاب ہے اور خاص طور پہ وہ لوگ جو وہاں موجود تھے. لا تکونو, نہ تم ہو جاؤ, کیسے, کاللذین کفروا, ان کی طرح جو کافر ہوئے. وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض, اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جب کہ وہ سفر پر نکلے, یا پھر او کانو غزن, یا وہ جہاد میں ہوں. کیا کہتے ہیں, یہاں سے آپ اگر ایک کوما ڈال لیں ورنہ یہ سمجھ نہیں آئے گی, غزن کے بعد انورٹڈ کوما ڈال لیں جو اسپیچ کی علامت ہوتی ہے کسی کا کلام. کیا کہتے ہیں, لو کانو اندنا, اگر وہ ہوتے ہمارے پاس, ما ماتو, تو نہ مرتے, وما قتلو, اور نہ مارے جاتے. بس یہاں تک جملہ اس کا کلوز کر دیجئے. ان کے اس جملے اور اس کمینٹ پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہے, لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, یہ اس لیے ہے کہ اللہ کر دے اس کو حسرت ان کے دلوں میں. کیونکہ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ, اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ سبق کا آغاز ہے اور اس کے اندر دوبارہ منافقین ہی کی ان باتوں کا تذکرہ ہے جو میدان جنگ میں وہ مسلمانوں کی ہمت توڑنے کے لیے کر رہے تھے, اور ان کو لگتا تھا کہ اگر اس وقت ہماری باتوں کو نہ مانا گیا تو مسلمانوں کو اس چیز کا وہ خوف دلا رہے تھے کہ تمہیں جتنی بھی شکست ہوئی یا نقصان ہوا یہ سب ہماری بات کے نہ ماننے کا نتیجہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو بچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ لا تکونوا کالذین کفروا. اگر صرف اتنے حصے پہ رک جائیے اور اس کو ترجمے کے ساتھ سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو کیا جملہ بنا, کیا ایمان والوں کافروں جیسے نہ ہو جاؤ. نکال دیں اس کو غزوہ احد کے تناظر سے, اس کو ادھر ادھر سے بالکل خالی کر کے بات کو یہاں پہ روک لیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کافروں سے مختلف دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مماثلت کی تو وہ انہی میں سے ہے. اور سچ ہے نا, انسان کا حال حلیہ, اس کے طور اتوار, اس کی رسمیں, اس کے سیلیبریشنز اور اس کے جینے مرنے کے طریقے جیسے ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں میں سے ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کفار سے مختلف دیکھنا چاہتا ہے. کیوں مختلف دیکھنا چاہتا ہے یہ آگے دیکھیں گے, بس یہاں یہ ایک اشارہ مل گیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ان کافروں کی ایک بات, اور یہاں پھر نوٹ کیجئے گا کہ اگلے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کافروں سے مراد منافق ہیں. میدان جنگ تک پہنچ چکے ہیں لیکن دل کے نفاق پہ قابو ہی نہیں پا رہے. کیا ان کی زبانوں پہ آتا ہے, وقالوا لاخوانہم, وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے. یہاں اخوان کیا ہے, اخن کی جمع ہے بھائیوں سے. کون سے بھائی, اب دیکھیے کہ بھائی کئی قسم کے ہوتے ہیں نا. ایک تو آپ کا سگا بھائی ہوتا ہے, کچھ دینی بھائی ہوتے ہیں, کچھ کاروباری طور پہ تعلقات بن جاتے ہیں, کچھ ملک میں رہنے والے آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں ملک کے بھائی ہیں ایک دوسرے کے. تو مراد کیا ہے کہ اپنے ہم خیال لوگ. عموماً جو بھائی ہوتا ہے وہ انسان کی سوچ کا حمایتی ہوتا ہے. تو یہاں بتا دیا کہ جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں, مراد یہ ہے کہ اپنے جیسے لوگوں سے یا دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں. اور ان لوگوں کے ساتھ ان کی بات کیا ہوتی ہے, یہاں سے اب ان کی بات ہے کہ کب کہتے ہیں, اذا ضربوا فی الارض, جب وہ زمین پہ نکلتے ہیں کسی بھی کام کے لیے نکلتے ہیں. ضربا کا جو لفظ ہے وہ مارنے کے لیے آتا ہے, پاؤں مارتے ہیں سفر میں, اس لیے سفر کو بھی ضرب کہتے ہیں. اور ضرب کا معنی کہانی کا بیان کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں مراد ہے کسی بھی سفر میں ہوں, یعنی جب کوئی سفر میں جاتا ہے اور وہاں اس کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے या उसको कोई हादसा हो जाता है या वो उसकी मौत आ जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है, तो वो क्या कहते हैं? इसका तज़किरा आगे आएगा। लेकिन किसको कहते हैं? नंबर एक, जो सफ़र पे जा रहा हो, वो कोई भी सफ़र हो सकता है, दीन का सफ़र, इल्म का सफ़र या कोई ऐसा सफ़र। और औ कानू गुज़्ज़न, या वो गाजी हों। गुज़्ज़न का लफ्ज़ जो है ना, ये गैन ज़ा और वाव से है, इसका रूट ये है, गाजी की जमा है। लफ्ज़ गजवा भी इसी से है। हर वो जंग जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई, उसको हम गजवा कहते हैं। तो कहा, कहते हैं कि जब कभी वो गाजी हों। और अमूमन गाजी किसको कहते हैं? जो मैदान जंग से जिंदा वापस आ जाए। जंग में जाने वाले लोग होते हैं, दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ शहीद हो जाते हैं, जान चली जाती है, कुछ माले गनीमत और फतह के साथ वापस आ जाते हैं। तो इस बात का खुलासा क्या है कि जब कोई किसी दीनी सफ़र पे निकलता है या मैदान जंग में जाने लगता है, तो मुनाफिक किस्म के लोग उसको क्या कहते हैं? लव। काश इस लफ्ज़ को हाईलाइट कर लें। इस पूरी आयत का मेन पॉइंट यही है, लव। लव का लफ्ज़ अरबी में काश के लिए इस्तेमाल होता है। काश, काश मैं ऐसा करती, काश ये हो जाता। ये लफ्ज़ पसंदीदा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लव का कहना शैतान के दरवाज़े को खोल देता है। क्यों खोल देता है? इसलिए कि शैतान को फिर अमल करना आसान हो जाता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब इंसान अगर यानी लॉ कहता है, तो शैतान के अमल का दरवाज़ा खुल जाता है। और आप अपनी अमली ज़िंदगी में इसको देख सकते हैं कि जो बंदा हर वक्त ये कहता है ना, अगर मैं ऐसा करता, काश ऐसा होता, काश काश, तो उसका दिल हसरतों से भर जाता है। फरमाया कि वो क्या कहते हैं? लव कानु इंदना मा मातु, अगर ये हमारे पास रहते ना, तो ये बिल्कुल ना मरते। वमा कुतिलू, ना मारे जाते। यानी चूंकि ये मैदान जंग में गए तो मर गए, चूंकि ये इल्म के रास्ते में निकले, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो मर गए। इंसान दुनिया के किसी काम पे निकले, मौत फिर भी आ जाती है। और हादसात में मरने वालों की तादाद उससे बहुत ज़्यादा है जो लोग जंगों में मरते हैं। लेकिन न जाने क्यों, जब किसी को दीन के रास्ते में कोई मुश्किल आती है ना, तो हर बंदा फिर उसको उसकी वजह ये बताता है कि तुम चूँकि अल्लाह के रास्ते में निकल गए थे, ना जाते तो ना होता। बस आप पढ़ने आते हैं, अल्लाह सुबहान तआला आप सबको महफूज रखें, हर आफियत में रखें, हर आफत से बचाए। लेकिन आप देखिए कि बिलफर्ज अगर गाड़ी कहीं हिट हो जाती है, तो वो वैसे भी तो हो सकती थी ना, क्या वैसे कभी नहीं हुई? लेकिन वो हिट जो अल्लाह के रास्ते के सफ़र में पड़ती है ना, वो बहुत ज़्यादा घर वालों को मुतासर करती है। वो कह देंगे कोई ज़रूरत नहीं है अब कल से जाने की, बैठ जाओ इधर से। फिर आप देखिए कि ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं, कई मौके पर निकलती हैं, जॉब के लिए भी निकलती हैं, कामों के लिए निकलती हैं, शोहरों की हेल्प के लिए निकलती हैं, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जो खातून अल्लाह के रास्ते में निकलेगी, उसके घर के कोने खुदरे भी देखे जाते हैं, बिस्तरों के नीचे भी देखा जाता है कि वहाँ भी गंदगी तो नहीं है। यानी लोग इस तरह माइक्रोस्कोपिक वे से देखते हैं उस शख्स को कि जो बंदा अल्लाह के रास्ते में निकला, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं कि हम उनके रहें। देखिए कि लोग क्या, हम सभी उसी का हिस्सा हैं। हम में से हर एक ने जब अपनी कब्र में जाना है ना, तो उस वक़्त हमने अपनी ज़िंदगी के सवालों का जवाब खुद देना है। लेकिन दुनिया में जब हम आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हम पे नज़रें लगाए होते हैं। कोई हमारा वक्त मांग रहा होता है, कोई हमसे खाना मांग रहा है, कोई हमसे तवज्जो मांग रहा है। अब नतीजा क्या होता है कि जब इंसान दूसरों के पीछे लग के अपनी आखिरत बिगाड़ लेता है ना, तो उसके नतीजे में कल उसको अपनी आखिरत के बिगाड़ का अंदेशा जो है वो परेशान करेगा। लेकिन जो बंदा अपनी आखिरत को, अपनी कब्र को याद रखता है, वो तो हर एक को पीछे डाल देगा कि नहीं भाई, मुझे याद है अपना मरना, मैं सारे काम करूँगी, जिम्मेदारियाँ निभाऊँगी, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है। मिसाल है कि कोई नमाज़ ना पढ़ने दे, नहीं चाहे नमाज की बजाय आप खाना खाएँ या हमें इस वक्त दें, कोई भी मिसाल हो सकती है, ये ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि किसी को समझ ना आए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोग फिर हसरतों वाली बातें करती हैं, ये ना मरते ना मारे जाते, और ये बात कहना इनके ऊपर अल्लाह का इंतकाम है। ली यजअलल्लाहु ज़ालिका, ताकि कर दे अल्लाह, किसको कर दे अल्लाह, इनकी इस बात को। यानी हसरत ये थी कि मुसलमान इनकी बातों को नहीं मानते। ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि बाप शहीद हुआ तो बेटा कफन बांधे सर पर मैदान जिहाद का रुख कर रहा है, भाई सर कटा चुका तो दूसरा भाई खून शहादत से सुरखरू होने की दुआएं मांग रहा है, माँ अपने एक बेटे को सुपुर्द खाक करती है जो शहीद हो गया, तब दूसरे बेटे को अपने दूध ही की लाज रखने की नसीहत करके सर पर खुद उसके खौत लगाती है और सर में हाथ में तलवार पकड़ाती है। यानी मुनाफिकों को ये बातें समझ ही नहीं आती थी, कहते थे ये दीवाने हो गए, ये मजनू है। एक नुकसान हुआ फिर भी तैयार हैं, फिर भी इनका हौसला नहीं टूटा। दूसरा नुकसान हुआ फिर भी नहीं टूटा। एक मुश्किल आई फिर नहीं ये दीन से रुके, दूसरी आई तो ना रुके। और ऐसी बातें कर करके ये अपना खून जलाते हैं। इनको अल्लाह ने इनके लिए दुख का सबब बना दिया कि ये हसरत है इनके दिलों में, फ़ी कुलूबिहिम, इनके दिलों में। इनको बता दो कि मैदान जंग में जाने से कोई नहीं मरेगा, बल्कि वल्लाहु युही व युमीत, और अल्लाह ही जिंदा करता है और वही मारता है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह ताला हर उस चीज़ को जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला है। क्या पता चला कि जो हुआ वो हुआ। किसी को किसी की मरने का सबब समझना, किसी को किसी के नुकसान का ज़रिया समझना, ये दुरुस्त नहीं है। अमूमन आप देखिए कि ख़ानदानों में भी जब लोग खुशी गमी के मौके पे जमा होते हैं ना, तो इसी तरह की बातें हो रही होती हैं। फलां की शादी वहाँ ना होती तो अच्छा था, मैं उसके कहने पर रिश्ता ना करती तो अच्छा था, मैं उसके कहने पर वहाँ कारोबार ना करता, मैं खामखा बातों में आ गई। इस तरह की बातों में दीनदार और बेदीन सारे ही जमा हुए होते हैं, क्योंकि इंसान के ऊपर उसकी मजलिस का रंग होता है। इसके बरक्स मोमिन जो है ना, ये बाशऊर होता है, वो लोगों की बातों से मुतासर नहीं होता। ऐसी बातें जो हैं इंसान के नेकियों की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोक लेती हैं, कि जिसके अंदर फिर इंसान की हिम्मत टूटे तो अल्लाह ताला कहते हैं इनसे पूछो कि क्या मौत सिर्फ़ मैदान जंग में आती है। युही व युमीत तो अल्लाह की सिफत है, वो तुम्हें घर में भी मार सकता है और मैदान जंग से भी बाकी वापस ले आएगा, क्योंकि वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, तुम्हारी इन हरकतों को, तुम्हारी इन बातों को अल्लाह ताला देख रहा है। इस आयत का खुलासा क्या हुआ कि इंसान जितनी मर्जी कोशिश करे किसी काम को अच्छे तरीके से करने की, इसके बावजूद कुछ ना कुछ रखने रह ही जाते हैं उसके काम में। ऐसी तमाम बातों के ऊपर फिर इंसान को बहुत मुहतात होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इंसान इस दुनिया में नुकसान से बचे, हादसात से बचे, लेकिन अगर कोई तकलीफ़ अल्लाह के रास्ते में आए तो उस पर खुशी मनाने की ज़रूरत है, ना कि हसरतें रखने की और गम करने की। जो बात होनी होती है उसका बहाना बन जाता है। अल्लाह ने मौत का वक्त रखा हुआ है, वो होगी। और इससे ये पता चलता है कि नेगेटिव टॉकिंग नहीं करनी चाहिए। ये पूरा ही रुकू और बल्कि पीछे का भी आप सुन रहे हैं कि मुनाफिकों की जो बातें हैं ना, ये इंसान के घटियापन की दलील होती हैं। आपको होता है कि इंसान की ज़ुबान से निकला हुआ बस एक लफ्ज़ भी बाज़ दफ़ा उसकी पूरी शख्सियत को खोलने के लिए काफ़ी होता है। सिर्फ एक लफ्ज़, लफ्ज़ भी नहीं, सिर्फ एक हूँ करके उठ जाना किसी जगह से, या ज़ोर से पांव पटक के ज़मीन पे चलना, बस ये एक्शन बता देगा कि इस बंदे के अंदर क्या भरा हुआ है। और जो ही गैर मामूली हालात होते हैं ना, उस वक्त इंसान के मुंह से बिल्कुल वो निकलता है जो वो होता है। आप आजमा लें, लोग सफ़र पे निकले, शुरू में बड़ी खुशगप्पियाँ, क्या हाल है, बहुत अच्छा, खाने को रख लिया, बिरयानी रख ली, चावल रख लिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा चले, खैर अब मंजिल की उम्मीद है, वहाँ पहुँचे, वहाँ भी सब अच्छा हुआ, लेकिन जो ही वापसी का सफ़र शुरू होगा ना, या फिर थक चुके हैं, खाना अब ख़त्म हो चुका है, उम्मीद तो कोई रही नहीं कि पिकनिक में अब और भी कोई मज़ा है, तो अब देखें नेगेटिव बातें शुरू हो जाती हैं। थकन, फिर कोई ना कोई बदमजगती। अक्सर लोग जो मिलजुल के कहीं घूमने जाते हैं ना, वो आखिर में ख़राब दिलों के साथ ही आते हैं। ये इंसान की एडवर्स कंडीशंस होती हैं कि जिसमें वो अपने आप को खोल देता है। ये मुनाफिक चूंकि दिल की खुशी से नहीं गए हुए थे, मारे बांधे गए हुए थे, जिसको कहते हैं चारों नाचार थे, वहाँ फतह की बजाय शिकस्त हो गई। अब ये वापसी पे ऐसी बातें करते आ रहे हैं, नेगेटिव शेयरिंग। और नेगेटिव शेयरिंग जितना इंसान को नुकसान देती है, उतना तो शायद किसी की जहालत भी नुकसान नहीं देती। देखिए कि इंसान की स्किल्स कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसके मैनर्स या उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका रवैया है, वो बहुत अहम होता है। इंसान जो होते हैं वो अपनी स्किल्स पे नहीं चुने जाते, अपनी शख्सियत के अंदर और अपने बिहेवियर के साथ चुने जाते हैं। आप पढ़ के देखें, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह जो गुजरे, या फिर सदर वजीर गुजरे, बस बहुत मामूली घरों के लोग थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया। तो इन आयात से मुसलमानों को ये सिखाया जा रहा है कि अपनी गुफ्तगू को ज़रा कंट्रोल रखो, ऐसे ही ना बोलते रहा करो। अच्छा आप सोचें ज़रा, अमूमन हम क्या बोल रहे होते हैं? चलें एक छोटा सा जायज़ा ले लें, आप सभी, अपना भी, मैं भी लेती हूँ। अमूमन घरों में तो हम काम में मसरूफ़ होते हैं ना, अब तो खैर उसमें भी सहूलत है, हैंड फ्री, टेलीफोन ने उस वक्त भी ज़ुबान को फारिग नहीं रहने दिया। खाना भी पक रहा है और बातें चीतें भी हो रही हैं। अमूमन देखे जब हम फारिग होते हैं, दावतों में, पार्टियों में या गाड़ी में, सिर्फ एक दिन की टेलीफोन टॉक अपनी हम सुन लें। हर गुजरते बंदे पे हमें कमेंट करना है, हर इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ जुमला कसना है, और इल्ला माशाल्लाह, ये पसंदीदा बात नहीं है। हम जब हर वक्त दूसरों को हिट करते हैं ना, उनको टारगेट रखते हैं, तो हमारे अंदर तदब्बुर की आदत नहीं आती, गौर व फिक्र नहीं आती, अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी नहीं आती, और हम अपनी ज़ात से बाहर हो जाते हैं। मोमिन को किसी मौके पे मुनाफिकाना गुफ्तगू जेब ही नहीं देती, और सच्चे मोमिन को ये बातें सजती भी नहीं है, जचती भी नहीं है। इंसान को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि बेहतरीन चीज़ मिले, मिल गई खुश, नहीं मिली तो बस फिर अल्लाह ताला पे डाल दें। ये जो बात है ना कि लव कानू, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इसके बाद आप देखेंगे आपके ताल्लुकात लोगों से बेहतर होंगे, शौहर से बेहतर होंगे सबसे पहले, क्योंकि आज तक हसरत ही ये थी कि यहाँ शादी क्यों हो गई, वहाँ हो जाती तो अच्छा था। मर्द भी ये सोचते हैं कि मेरी तो वहाँ होनी थी, यहाँ क्यों हो गई। हो गई भाई, अब बदलना चाहते हैं आप। मसलन आप देखिए कि बाज़ ख़वातीन जो अपने शौहर से खुश नहीं होती, या कोई भी रीज़न हो सकती है, नहीं अच्छी आदत के मिले, मिसाल है, नहीं मिले अच्छे, क्या करना है अब, सोचें ज़रा। हसरतों में पढ़ पढ़ के जलाना है खुद को, खुद ही रोग होंगे। लोग कहते हैं जल के कोला होगी लड़की, खुश नहीं थी, शादी पे कर दी ज़बरदस्ती, एक दो साल में हड्डियों का ढांचा बन गई, किसी का क्या बिगड़ा। अगर कैंसर होगा तो उसको खुद ही होगा, दर्द होगा तो उसको खुद सहना पड़ेगा। इंसान की आफियत इसमें है कि तकदीर को कबूल कर ले। सूरत मरियम में इस पे बहुत तफसील से हम बात करेंगे, अल्लाह ने अगर चाहा, क्योंकि वहाँ अल्लाह ताला कहते हैं इनको डरा दो यौमल हसरती, उस हसरत के दिन से जब दिल हलक के, खनाजिर के करीब होंगे। तो अपनी ज़िंदगी से हसरत को निकाल दें। नबी सल्लम ने फरमाया कि एहरिस अलामा यनफाउ का, उसकी हिरस रखो जो तुम्हें नफ़ा दे, और उसके बाद अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलती तो अल्लाह ताला के ऊपर राज़ी हो जाओ। बस इसके बाद जो मामला होगा वो अल्लाह के हाथ में रख दो। तो इंशाल्लाह खुश रहने का राज है कि अपनी किस्मत को कबूल कर लें। बाज़ इस पे बड़े दुखी रहते हैं कि बेटियाँ ही क्यों हैं, बेटा क्यों नहीं है। भाई नहीं है, अब इनकी कदर कर लो, इनकी अच्छी तरबियत कर लो, इनको अच्छे अदब अखलाक सिखा लो, बस क्या गम है। कुछ ने कुछ ना कुछ पाले होते हैं। होता पता क्या कि हम शुरू ज़िंदगी में इतने आइडियलिज्म का शिकार हो चुके होते हैं कि हमारे आइडियल्स जो है ना, वो हमारे आइडल बन चुके होते हैं। पहले से सोच लिया कि शादी तो होगी तो वो किसी डॉक्टर के साथ होगी, और बस मेरे आगे पीछे मुलाजिम होंगे, और बस फिर देखना मैं बेगम साहिबा बन के रोब डालूंगी। नहीं हुई डॉक्टर के साथ, हुई भी थी तो वो नहीं उसकी प्रैक्टिस चली, क्या करेंगे। कोई औरत मेरा ख्याल है कि शादी के बाद ये नहीं चाहती कि अब उसका शौहर बदल जाए, कोई चाहती है, मेरा नहीं ख्याल। जैसा भी है शुक्र करे। नौज़ बिल्ला, बड़ी बुरी बात कहने लगी हूँ, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करे, सिर्फ शौहर को बेदार करने के लिए। नहीं पसंद शौहर तो क्या चाहते हैं कि ये मर जाए, चले जाए, ख़त्म हो जाए। क्या अब इसको छोड़ के तलाक के मरहलों में गुजर के, 3 महीने की इद्दत गुजार के फिर नए रिश्तों नातों में पड़ना चाहते हैं। कहीं तो दुनिया में चैन पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा। सिर्फ उसको चैन पड़ेगा जिसने अपने दिल को मुतमईन कर लिया, और ईमान इत्मीनान देता है, यही था मेरे नसीब में, मुझे यही सास मिलनी थी और मुझे यही बहू मिलनी थी, यही चीज़ थी मेरे नसीब में। अब कहते हैं हाय बस, वो देखा। बस लोग तो छोटी छोटी हसरतों पर रोते हैं। वो देखा चीज़ मिस हो गई, फ्लाइट मिस हो गई, कूपन एक्सपायर हो गया, हाय हाय क्यों नज़र ना पड़ी। 2 दिन बाद देखा डेट एक्सपायर हो गई। हो गई, पहले से सोच के रखें, अपनी डेट्स को पहले लगा के रखें, अगर आपको पहले इस्तेमाल करना है। हो गया नुकसान, हो गया। जो लोग पिछली ज़िंदगी के गम में रहते हैं वो अगली ज़िंदगी कभी खुशगवार नहीं गुजारते। अल्लाह ताला ने यही पैगाम हमें इसमें दिया, और जो बात थी उनकी मौत से बचने की तो उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया आयत 157 में कि वलाइन कुतिल तुम फी सबीलिल्लाह, अगर तुम मारे गए अल्लाह के रास्ते में, औ मुत्तुम या तुम खुद मर गए, क्या हुआ, लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम खैरुम मिम्मा यजमाउन, अलबत्त अल्लाह की तरफ से बख्शिश और उसकी मेहरबानी उन सारी चीज़ों से बेहतर है जो वो जमा करते हैं। क्या बता दिया कि मौत तो आनी थी, वह हर सूरत आएगी। 2 ही तरीके होते हैं ना, या कोई खुद मर जाता है या कोई मार देता है। वो मौत जो बख्शिश का सबब बन जाए, वो रहमत का सबब बन जाती है, जन्नत में भेजने का सबब बन जाती है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जन्नत को फरमाता है कि तू मेरी रहमत है। अल्लाह ताला बता रहा है कि वो मुनाफिक हो, तुम क्यों गम करते हो कि 70 मारे गए, सोचो वो तो बच गए, वो तो दुनिया के झंझटों से आज़ाद हो गए। यहाँ तो उनको हर वक्त मुश्किल थी, हर वक्त भूख थी, प्यास थी, एक जंग थी, दूसरी थी, वो तो पता नहीं कहाँ पहुँच चुके। वो तो जन्नतों में अगली आयतों में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि शुहदा की रूहों के साथ क्या मामला होता है। तो कहा कि जो मौत अल्लाह के रास्ते में आ गई वो तो बेहतरीन मौत है, ये दुनिया की सारी चीज़ों से बेहतर है जो वो जमा करते हैं। अब देखिए कि यहाँ लफ्ज़ फ़ी सबीलिल्लाह इस्तेमाल हुआ है ना, तो फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। नंबर एक, शहीद। शहीद अल्लाह के रास्ते में मरता है, इसलिए शहीद की मौत शहादत के दर्जे पे। इसी तरह दूसरा, हज के लिए निकला हुआ शख्स, अगर कोई शख्स हज के लिए जाए और वहीं उसको मौत आ जाए तो इंशाल्लाह ताला ये भी उसके लिए फ़ी सबीलिल्लाह मौत के मुतरादिफ़ है। इसी तरह एक तीसरी मौत होती है, इल्म के रास्ते की मौत, तालिब इल्म की मौत, ये तो सरासर फ़ी सबीलिल्लाह मौत है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मन सलक तरीक़न, जो चला उस रास्ते पर कि जिसमें वो इल्म हासिल करे, अल्लाह क्या फरमाता है उसके लिए, सख़लल्लाहु लहु तरीक़न फिल जन्ना या इलल जन्ना का लफ्ज़ आता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। आज ज़रा सोचिए कि हमारे यहाँ उस शख्स के बारे में क्या लोगों के कमेंट्स होंगे जिसको दीन पढ़ते पढ़ाते हुए मौत आ जाए। अल्लाह तो कहते हैं कि शहीद का पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है तो उसके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, उसकी रूह निकलते डायरेक्ट जन्नत में पहुंच जाती है, आम मोमिनों की रूहें तो क़यामत के बाद भेजी जाएंगी। तो क्या हुआ, मरना तो है, मौत तो आनी है, क्या जमा करोगे, कैसे सोचोगे। अब देखिए कि मैं कल भी किसी से जिक्र कर रही थी कि नेकी कमानी होना तो बड़ी आसान है, अपनी जगह बैठ जाएं, चुपके से अल्लाह अल्लाह करते जाएं, थोड़े नफिल पढ़ लें, जब थक जाएं तो थोड़ा कुरान पढ़ लें, उसके बाद थोड़ा सा कोई वजीफ़ा कर लें, कुछ ना कुछ करते रहें, बहुत आसान है। क्या इनफरादी नेकियां करनी मुश्किल है, सहूलत से करें। अल्लाह ने तो इस पर भी सवाब रखा है कि आप अच्छी नीयत से घर का खाना पका रहे हैं और आप नमाजियों के लिए खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, अजर है। लेकिन फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ जो है ना, ये बंदे को तोड़ के रख देता है। बस दफ़ा वो नेकियां जो तबीयत पे बोझल पड़ती हैं, उसके लिए सफ़र करना पड़ता है, उसके लिए भूख प्यास बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसमें अंदेशे भी बड़े होते हैं। आप घर में बैठे आप सिक्योर हैं ना, गाड़ी में बैठेंगे तो हादसे का डर नहीं है, सच है ना, जो घर में बैठे हैं अमूमन वो सिक्योर्ड है ना। अगर हम घर से निकल के यहाँ तक आते हैं तो कितने ख़तरों से बच के आते हैं ना, एक्सीडेंट का भी डर है, टकराव हो सकता है, कुछ और हो सकता है। फिर इसी तरह आप बिलफर्ज़ किसी दूसरे मुल्क जाते हैं दरसो तदरीस के सिलसिले में, एयरपोर्ट के सारे मराहल सामने आएंगे ना कहीं कोई पेचीदगी निकल सकती है ना। बंदा सोचे रखो इन सारे कामों के एक तरफ और बैठ के घर में अल्लाह अल्लाह करते रहो, लेकिन अगर सारे ही लोग ये सोच लेंगे ना तो फिर अल्लाह का काम नहीं होगा। इसलिए कुछ लोगों को तो ज़रूर ऐसे काम करने पड़ेंगे कि जिससे अपनी जान को मुश्किल में डाल के, सफ़र की सौपतों को बर्दाश्त करके, रास्ते की मुश्किलात पे काबू पा के अल्लाह के रास्ते में निकलना है। और ये निकलना उसके लिए बहुत आसान है कि जिसको ये यकीन आ जाए कि लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमाउन। ज़रा सोचिए क्या जमा करते हैं लोग, अमूमन तो माल जमा होता है, घर की चीज़ें जमा होती हैं, मोहब्बतें जमा होती हैं, दावतें, पार्टियाँ, कितना अच्छा लगता है नफ्स को, आज वहाँ दावत, आज उसके घर खाना, आज वहाँ जा रहे हैं, आज शॉपिंग पे जा रहे हैं, आज घूमने जा रहे हैं, नफ्स तो यही चाहता है, ये तो सरकश घोड़ा बन जाता है इंसान के सामने। लेकिन आप सोचिए, चले आपने ये सब कुछ कर लिया, मुतमईन रहे, बड़े फूलों में अपने आप को रखा, नाजों से अपने आप को पालते रहे, तो कल क्या होगा, जब मौत आएगी तो क्या होगा, उस वक़्त क्या अंजाम है। क्या ये अक्लमंदी का सौदा है कि आप चंद दिन की खुशियों के लिए अपनी आखरत को ख़राब कर लें, या फिर वो शख्स अक्लमंद है कि जिसने इस वक्त का हक अदा कर दिया और वहाँ अल्लाह ताला से वो सारी नेमतें पाली जो इस दुनिया में उसने छोड़ी थी। फिर फरमाया वाला मुत्तुम उक्तिल तुम लइलल्लाह ही तुख्शरून, और अगर तुम मर गए या मारे गए तो अलबत्ता अल्लाह ही के आगे इकट्ठे किए जाओगे तुम, कहाँ तक बचोगे। आज अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलते, आज अल्लाह के रास्ते को नहीं अपनाते, नहीं तुम जंग में निकलते, नहीं तुम इल्म के मैदान में निकलते, कोई बात नहीं, कल आना तो हमारे ही पास है। पिछली आयतों में मुनाफिकीन का कॉल था कि लऊ कान लना मिनल अम्री शयुम मा कुतिलना होना, हाँ अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि चलो तुम ना निकलो, ना तुम मरते, तुम्हें अपनी बात को मनवाने का शौक था, तो आज देख लो कि अगर तुम उस मौत से बच के घर में रहते हो तो क्या फिर तुम बच जाओगे, कोई भी नहीं बचेगा। ये मत सोचिए कि आज इस दुनिया में हम अल्लाह ताला से दूर हैं और कल अल्लाह ताला हमें जमा करेगा। ला इलाल्लाह ही तुखशरून, मतलब क्या है कि आज दुनिया में भी वो अल्लाह हमसे करीब है, हमारी शहरक के करीब है, लेकिन आज हम दुनिया की मसरूफियात में इतने मशगूल होते हैं कि हमें अल्लाह ताला के इस कुर्ब का यकीन ही नहीं होता। कल जब सारे काम ख़त्म होंगे, ज़रा सोचिए, बिल्कुल फारिग हैं, कोई काम नहीं, कुछ भी उस वक्त नहीं करना, और अल्लाह ताला की ज़ात के सामने हिसाब दही के लिए खड़े हैं, वो वक्त सामने आएगा तो इंसान खुद ब खुद अपने आप को अल्लाह के रास्ते में लगाएगा। खुलासा यही है कि तू बचा बचा के न रख इसे, कि तेरा आईना वो आईना है जो शिकस्तर हो तो अजीज तर है निगाह आईना सास में। शेर तो गलत होगा लेकिन मफहूम इसका यही है कि अपने आप को बचा के ना रखो, मत अपने आप को क्रिस्टल की डॉल बनाओ, मत अपने आप को इतना नाजुक बनाओ कि तुम्हें बचना है बचना है, तुम बचोगे फिर भी नहीं। ये जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अगर हमारे जज्बात भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हों तो करें, कुछ कुर्बानियाँ करें ऐसी हम कि कल के अल्लाह ये वक्त तेरे लिए कुर्बान किया था। कुछ भूख कुर्बान करें, कुछ नींद कुर्बान करें, कुछ माल कुर्बान करें, कोई जॉब कुर्बान करें इंसान, कोई अपना आराम कुर्बान करे। ये छोटी छोटी कुर्बानियाँ ही फिर अल्लाह के सामने इंसान को खड़ा होने के काबिल करती है, वरना याद रखिए कि इंसान के पल्ले में तो कुछ भी नहीं। और रह गई मौत, तो ऐ नमा तकूनो युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। सूरत निसा की आयत 78 में आता है कि तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुमको मिल जाएगी, चाहे तुम बुलंद बुर्जों में हो, मजबूत किलों में हो। यही वो अकीदा है कि जिसने ईमान वालों को बहुत बहादुर कर दिया था, मौत से नहीं वो डरते थे। और जब वहन आता है, और वहन क्या है कि वो कमज़ोरी जो मौत के डर से और दुनिया की मोहब्बत से पैदा हो, तो फिर समझ लें कि लोग ये भी कहते हैं कि जिहाद जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको निकाल दें, इल्म की ज़रूरत ही कोई नहीं, और दिस एंड दैट। तो ऐसी सारी चीज़ों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखने की दावत देता है।